कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो रूप गोस्वामी 16वीं सदी में बहुत महान संत हुए। वो चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य थे वो, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो हम इस्कॉन में पालन करते हैं उसके प्रमुख आचार्य माने गए। तो गौड़ीय वैष्णवों को तो कभी कभी रूपानुग भी कहते हैं। अनुग मतलब जो पालन करते हैं, अनुगमन करते हैं। तो रूप गोस्वामी के अनुयायियों को रूपानुग कहा गया। तो वो प्रमुख आचार्य है इस संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के बाद। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक प्रार्थना लिखते हैं आरंभ में, भगवद्गीता के भूमिका के आरंभ में। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट मन की अभिलाषा को स्थापना करने के लिए रूप गोस्वामी इस जगत में प्रकट हुए, ऐसे उनके बारे में बताया गया। और चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षाएं हैं सिर्फ रूप गोस्वामी जानते थे। एक और गोस्वामी हुए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो भी जानते थे। जब भी कोई कुछ नाटक लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कुछ ऐसे कविता लिखते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करने से पहले वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास जाके पहले उसको वो प्रस्तुत करना चाहिए। जब वो अनुमति देते हैं तभी जाके चैतन्य महाप्रभु के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता था। तो वो भी जानते थे चैतन्य महाप्रभु के हृदय को, उनकी शिक्षाओं को, उनके मन की अभिलाषा को वास्तव में। लेकिन रूप गोस्वामी को और भी प्रमुख माना गया क्योंकि रूप गोस्वामी उसको उन्होंने सबको बताया, उन्होंने फैलाया, प्रचार किया। इसलिए गौड़ीय वैष्णव उनको रूपानुग कहते हैं। तो उन्होंने एक ग्रंथ रचना किया भक्ति रसामृत सिंधु करके। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं, तो उसको द नेक्टर ऑफ डिवोशन करके उन्होंने अंग्रेजी में, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा, भक्ति योग के पूर्ण विज्ञान उसका वो वर्णन किए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये भक्ति क्या है, भक्ति का क्या परिभाषा है, कितने स्तर के भक्ति होते हैं और कैसे भक्ति किया जाता है, क्या क्या अंग है भक्ति में, जप करना, भक्तों का संग करना, श्रीमद् भागवत भगवद्गीता को सुनना, वो कैसे पूर्ण विज्ञान है उसके बारे में, अलग अलग स्तर में क्या क्या लक्षण है होते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। वो एक परिपूर्ण विज्ञान है भक्ति, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो एक चीज रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण भक्ति ये स्वाभाविक है, नेचुरल, सभी लोग कृष्ण भक्त है हृदय से। तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। सब लोग भगवान कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो वास्तव में जगत में लोग क्या है, आनंद को ढूंढ रहे, सुख को ढूंढ रहे सब जगह। उनको पता नहीं है कि कृष्ण भक्ति में वास्तविक आनंद है, या भगवान कृष्ण में ही उनकी सेवा करने में ही वास्तविक आनंद है, उनको पता नहीं। लेकिन सभी लोग उनको ही ढूंढ रहे, वही वास्तविक आनंद जो कृष्ण के पास है उसको ही ढूंढ रहे। तो ये कृष्ण बुक यहाँ पर आप दिखते हैं, उसके आरंभ में जॉर्ज हैरिसन भी लिखते हैं, सो एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्ण, सम नो इट, सम डू नॉट नो इट, तो ऐसे वो उसने भी लिखा था उसके आरंभ में आप देखेंगे। तो क्योंकि ये कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है, महाप्रभु जब रूप गोस्वामी इसको भक्ति रसामृत सिंधु को रचना किया उन्होंने, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु उनको 10 दिन तक प्रयाग में वो दशाश्वर में एक घाट में उनको शिक्षा देते। तो उस शिक्षा में वो एक चीज़ बोलते, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो हृदय में शाश्वत रूप से है, उसको बाहर से कुछ उसको प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं, वो हृदय में है। जब हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय, वो फिर से जागृत हो जाता है। ऐसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताया। तो इसको बाहर से कुछ प्राप्त करने का जरूरत नहीं है, ये हृदय में है और श्रवण कीर्तन करने से ये प्रकट हो जाता है। जैसे उदाहरण तौर पर ऐसे कभी कभी एक कोई मेजर एक्सीडेंट कुछ होने के कारण ऐसा कुछ ट्रॉमा या शॉक हो जाता है, वो एक व्यक्ति अपना याददाश्त खो जाता है, वो कौन है, उनके सभी संबंधी कौन है, वो कहाँ है, ये सब भूल जाता है। तो ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण तो उसको उसको याद फिर से जागृत करने के लिए क्या करते हैं, उसको ऐसे जगह पर लेके जाते हैं जिसको उसको बहुत प्रिय था या पहले उसको संबंधित था, या ऐसे चीज़ों को देते हैं या ऐसे व्यक्तियों से मिलाते हैं, तो ऐसे किसी न किसी तरह उसको जागृत किया जाता है, उसको याद। वैसे ही हमारे साथ जो भगवान के साथ जो संबंध है, अभी हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग हमारे जो कृष्ण के संबंध है, वो प्रेम का जो संबंध है वो भूल चुके हैं। तो ये श्रवण कीर्तन करना, गीता भागवत पढ़ना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, ऐसे भगवान के लीला किए हुए स्थानों को स्थानों में जाना, जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं या जगन्नाथपुरी जाते हैं या मायापुर जाते हैं, तो उन स्थानों में जाते हैं तो फिर से हमारा याददाश्त वापस आ जाएगा भगवान के साथ जो हमारा संबंध है। तो ऐसे इसको याद दिया जाता है, याद किया जाता है, फिर से स्मरण किया जाता है, स्मरण वापस लेके आने के लिए प्रयास किया जाता है। तो यही जो श्लोक चैतन्य महाप्रभु उनको बताए थे, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, तो उसको ही संस्कृत भाषा में रूप गोस्वामी वक्र संग सिंधु में लिखते हैं, कृति साध्य भवे साध्य भावस साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम रदि साध्यता। तो वो साधन भक्ति को वर्णन करते हैं कि साधन भक्ति वो है जिसमें लगने के कारण जो हृदय में नित्य सिद्धस्य भावस्य, हृदय में जो भाव भक्ति है या प्रेम है भगवान के प्रति, भाव या प्रेम है जो नित्य सिद्ध है, वो जागृत हो जाता है, उन कार्यों को ही साधन भक्ति कहते हैं। तो साधन और साध्य ऐसे दो चीज़ होते हैं। तो साध्य मतलब हमारे जो गंतव्य या लक्ष्य जो है उसको, और उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को साधन कहते हैं। अभी प्रसाद का समय हो गया, तो प्रसाद लेना हमारा लक्ष्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं और माताएं परोसते हैं, फिर हम लोग प्रसाद प्रार्थना बोल के हम लोग शुरू कर देते हैं। तो प्रसाद लेना हमारा लक्ष्य है, उससे पहले जो भी हम लोग कार्य करते हैं, माताएं रसोई बनाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं या मार्केट से कुछ खरीद के लेकर आते हैं, ये सब साधन है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन लक्ष्य ये जो सिद्धि है वो हमारे हृदय में ही है, तो फिर से उसको जागृत करना नित्य सिद्ध, उसको ही साधन भक्ति कहते हैं। तो श्रवण कीर्तन करना, ऐसे स्थानों में जाना जो भाग यहाँ पर भगवान लीलाएँ करते हैं, भक्तियों का संकर्ण, जो जिनको भगवान के प्रति प्रेम है, तो भक्तों का संकर्ण, ये सब चीज़ हम लोग कार्य करते हैं। और इसके तद्विरुद्ध जो भी भौतिक कार्य करते हैं वो हमें भगवान को बुला देते हैं, वो बाधा बन जाते हैं। तो ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। तो इसके लिए आधुनिक समाज में कृष्ण भक्ति स्वाभाविक है, सबके हृदय में है, सभी अंत में सभी लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो भारतीय हो या अमेरिकी हो, फ्रांस के वासी हो या अन्य कोई लोग भी, जो भी हो, सब लोग भगवान के भक्त है, सब लोग वैष्णव है। उसके लिए उदाहरण क्या है? उसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण जो हम लोग समझ सकते हैं, जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, प्रभुपाद जी जब जाने से पहले किसी को पता नहीं था कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में पता नहीं था, कृष्ण नाम के बारे में पता नहीं था। जब प्रभुपाद जी जाके वहाँ पर, वो क्या करते थे, वो हफ्ते में 3 बार भगवद्गीता के ऊपर प्रवचन करते थे। उन्होंने उनके रूम के बाहर उन्होंने एक साइन बोर्ड लगाया था, भगवद्गीता लेक्चर्स फ्राइडे संडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ऐसे उन्होंने, तो ऐसे उन्होंने साइन बोर्ड लगाया था। और वो टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर जाके वो कीर्तन करते थे, शाम को जाके अकेला बैठ के कीर्तन करते थे। तो ऐसे उनके कीर्तन सुनने के लिए लोग आते हैं आए, फिर प्रभुपाद जी ने उनको गीता प्रवचन करने के लिए सुनने के लिए आए, उनको आमंत्रित किए। तो जब आमंत्रित किए तब लोग आके सुनना शुरू किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिप्पी लोग आया करते थे, युवक युवतियाँ, अमेरिका के उस समय के युवक युवतियाँ तो आया करते थे। तो ये आंदोलन जो है युवक युवतियों से ही शुरू हुआ, और मूलतः चैतन्य महाप्रभु जब शुरू किए, वो भी हालांकि अद्वैत आचार्य थे, बुजुर्ग थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु युवक थे, जब 16 साल के थे जब शुरू किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रवचन किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, तो उसको सुन के क्या हो गए, वो लोग भक्त बन गए। तो अभी आप देखिए पाश्चात्य देश के लोगों को, उनको तो कृष्ण के बारे में पता नहीं है, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, बाइबल में ज़्यादा वर्णन नहीं है भगवान कैसे दिखते हैं। प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते थे, हम आपको भगवान का नाम बताएंगे, भगवान का पिता का नाम क्या है बताएंगे, माता का नाम क्या बताएंगे, उनका एड्रेस क्या है वो सब बताएंगे आप, ऐसे प्रभुपाद जी का, क्योंकि वेद शास्त्रों में ये सब चीज़ों का अच्छी तरह से वर्णन है, लेकिन बाइबल कुरान में ये सब चीज़ों का वर्णन नहीं है उनको, वो सिर्फ गॉड 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 बोलते रहते हैं हमेशा। तो वो कैसे भगवान दिखते हैं, कौन है वो भगवान उनके दान में क्या करते हैं, वो पता नहीं। तो जैसे ब्रह्म संहिता में वर्णन होता है ना, हर रोज सुबह हम लोग वेणु ख्वनंतम अरविंद दलाय ताक्षम बरहावताम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक उल्लेख करते थे, आपका भगवान के बारे में आपका धारणा क्या है, व्हाट इज योर कंसेप्शन ऑफ गॉड, आपके अनुसार भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक उल्लेख करते थे, भगवान क्या करते हैं, वेणु बजाते, वेणु कनंतम अरविंद दलाय ताक्षम, उनके नेत्र क्या है, तो अरविंद दल कमल पुष्प के दल के समान है, और वो मोर फंग पहनते हैं, बरहावतम सम, और बहुत सुंदर दिखते हैं ऐसे। तो कंदर्प कोटि कमनीय, कितना सुंदर दिखते हैं वो, कोटि कोटि जो कामदेव है, तो उन सबको मिला के जो सुंदर व्यक्ति बनते हैं वो सुंदरता भी उनको, उनकी सुंदरता को तुलना नहीं कर सकते। तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, तो मैं उस गोविंद को आराधना करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता। और चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभि पालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमः भजामि। उनके धाम चिंतामणि धाम है, वो चिंतामणियों से बना है। तो भौतिक जगत में भी चिंतामणि होता है, आजकल लोगों को पता नहीं है सब चीज़, सब प्लास्टिक सब जगह है, प्लास्टिक सीमेंट टिन कार शहर में आप देखते हैं ना, क्या देखते हैं आप, बड़े बड़े ये सीमेंट के इमारत देखते हैं, सीमेंट जंगल है और टिन कार इधर उधर घूमते रहते हैं। तो पहले ज़माने में लोग वो बैलगाड़ी या हॉर्स कैरेजेस, तो घोड़े के रथ पर चलते थे। आप तुलना करेंगे घोड़े के रथ और कार को, कार क्या है, बहुत ही लो क्लास है, घोड़े के रथ को तुलना करेंगे है ना, वो बहुत सुंदर है ना घोड़े का रथ है ना, और घोड़ा भी एक जीवित व्यक्ति पशु है, वो लेके चलता है टक 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 करके, वो आवाज़, तो उसका सुंदरता अलग है। ये सब ये लोग टीम कार बनाए, ये सोचते हैं कि हम बहुत प्रगति किए। तो शहर में आप देखेंगे ये सब चीज़ दिखते हैं, लेकिन भगवान का धाम चिंतामणि धाम, चिंतामणियों से चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष। तो और सब जगह वो चिंतामणि मणि जो है प्रकाश फैलाते हैं, और इसलिए वो बहुत प्रज्वलित दिखता है। और वहाँ पर कल्प वृक्ष है, तो वहाँ पर कोई इच्छा नहीं रहता भक्तों को, कोई अन्य इच्छा नहीं रहता पूर्ति करने के लिए, सिर्फ भगवान की सेवा करने की उनके अंदर इच्छा रहता है। तो फिर भी वहाँ पर कल्प वृक्ष रहते हैं, उनकी सेवा के लिए जो भी ज़रूरत है वो लोग वो इन कल्प वृक्षों से इकट्ठा करते हैं। सो और सुरभि रवि पालन, तक भगवान क्या करते हैं, सुरभि गायों को वो चराने के लिए लेके जाते रहते हैं, और ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं कूदते हैं, तो ये कार्य करते हैं भगवान। भगवान ऐसे नहीं कि एक सुप्रीम जज, एक ऐसा हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज की तरह से लोगों को जो पाप करते हैं उनको दंड देते हैं, वो भी करते हैं, वो अलग रूप है उसके लिए, विष्णु रूप है ना। तो यमराज वगैरह उनके सेवकों को लगा देते हैं, वो क्या करते हैं हमेशा गोपियों के साथ नाचना, ग्वाल बालों के साथ कूदना, गायों को चरा के लेके जाना, इसमें वो व्यस्त रहते हैं हमेशा। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों को उल्लेख करके बताते हैं कौन भगवान है, उनके पिताजी का क्या है, उनका स्थान कहाँ पर है, उनका एड्रेस क्या है, सब तो प्रभुपाद जी वर्णन करते थे। तो ये लोगों को, पाश्चात्य लोगों को ये पता नहीं लोगों को भगवान के कृष्ण के बारे में, लेकिन जब प्रभुपाद जी जाके ये कृष्ण भक्ति या भगवद्गीता के जो दर्शन तत्व है, या भगवान ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, ये सभी भगवान के बारे में ये सब विषयों को प्रस्तुत किया उन्होंने, तुरंत ही उनके अंदर ये कृष्ण भक्ति जागृत हो गई। आप देखिए पाश्चात्य देश के लोग वो वैदिक सभ्यता से कितना दूर है वो लोग, और कितना पतित है। तो कभी कभी प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं, वो हिंदी प्रवचन है कुछ, प्रभुपाद ज़्यादा नहीं है उनके हिंदी, थोड़ा हिंदी प्रवचन है, एक प्रवचन में वो वर्णन करते हैं ये लोग जन्म से ही कैसे शराब पीना, कैसे वो सिगरेट पीना, कैसे नशा करना, ये सब जन्म से सीखते हैं भाषा देश के लोग। पिताजी फूकता रहता है, वो बोलता है बच्चे को तुम भी एक बार एक फूक लो एक बार ऐसे, वो पीता रहता है उसको भी फिला देते हैं, या जन्म से उसको जो मांस के पाउडर पाउडर्ड मीट उसको पाउडर्ड वो क्या करते हैं उसको बच्चे को खिलाते हैं, वो दूध में या पानी में मिलाकर उसको खिलाते हैं, जन्म से उसको ऐसे वो लोग सीख लेते हैं। तो आजकल भारत के वासी भी ऐसे पतित हो गए सब लोग, सब हमारे मित्र, हम बोल रहे थे हम अमेरिका प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, हमारे हमारे मित्र को बोल रहे थे, तो उसने बोला मच्छ देश जा रहे हो ऐसे बोला। मैंने उनको बोला तुम कहाँ पर हो अभी क्योंकि भारत भी क्या हो गया अभी लक्षद्वीप, सब लोग मांस भक्षण करते हैं, सब लोग शराब पीते हैं, सब लोग सिगरेट पीते हैं, तो वो लोग कितना फिर भी भारत भारत है, तो थोड़ा प्रचार कर लेंगे तो लोग समझ लेते हैं। तो पाश्चात्य देश में तो वो बहुत दूर है कृष्ण भक्ति से, वैदिक सभ्यता से, फिर भी जब प्रभुपाद जी ने उनको प्रचार किया तुरंत ही उनके अंदर वो कृष्ण भक्ति जागृत हो गया। तो ये प्रमाण है कि कृष्ण भक्ति क्या है, हृदय में है, स्वाभाविक है। तो उस वो बाहर से कुछ वो अंदर कुछ डालने का जरूरत नहीं है। सो प्रभुपाद जी वो हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो इट इज़ नॉट इम्पोजिशन ऑन इंटेलिजेंस एंड माइंड, मन के ऊपर दबाव नहीं है, वो मन के ऊपर, हृदय के ऊपर या बुद्धि के ऊपर कृष्ण भक्ति, वो हृदय में स्वाभाविक है। तो अंत में रूप गोस्वामी भी वर्णन करते हैं, तो साधना क्या है, जैसे एक बच्चे के अंदर चलने की शक्ति रहता है, थोड़ा उसको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति क्या है, हमारे अंदर रहता है, थोड़ा हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो फिर से प्रैक्टिस करने का क्या प्रक्रिया, अभ्यास की प्रक्रिया, वही साधना, जप करना, गीता भागवत सुनना, भक्तों के संग करना। तो ऐसे करने से, वैसे रूप गोस्वामी 64 अंग बताते हैं, तो 64 अलग अलग प्रक्रिया बताते हैं कि कृष्ण भक्ति को जागृत करने के लिए। तो उन 64 अंगों में 5 प्रमुख अंग, विग्रह का सेवा करना, ऐसे भगवान के आरती करना वगैरह, तो फूल चढ़ाना, उसको विग्रह सेवा करते हैं, और भक्तों का संग करना दूसरा है, और नाम संकीर्तन करना, कीर्तन करना, जप करना, और गीता भागवत से श्रवण करना, और मथुरावास, मतलब जो भगवान के लीला स्थली है वृंदावन मथुरा मायापुर नवद्वीप, इन स्थानों में वास करना। वास करना मतलब तो वहाँ पर हम लोग जाके कुछ समय बिता सकते हैं। तो इन इन ये जो 5 प्रमुख अंग, क्यों ये 5 प्रमुख अंग बताए गए, क्योंकि इनमें इन 5 अंगों में इतना शक्ति है कि एक व्यक्ति जिसको ज़्यादा आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति, के अंदर ही भी आकर्षण जागृत कर सकते हैं, इसलिए ये इनको शक्तिशाली अंग बताया गया। 5 पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो भक्ति के शक्तिशाली अंग बताए गए। तो कम से कम इन चीज़ों को करना चाहिए। वैसे ये तो हम लोग हरा आसानी से करते हैं, तो जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो ये स्थान क्या है, मथुरा भगवान के समान हो जाता है, भक्त रहते हैं, भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं, हम लोग सुनते हैं भगवान भक्तों के संग में, ये सभी 5 अंगों का यहाँ पर अभ्यास हो जाता है। तो ऐसे करने से क्या हो जाता है, स्वयं वो जागृत हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे क्योंकि ये स्वाभाविक है कृष्ण भक्ति, इसको कोई भी जागृत कर सकता है, छोटे बच्चे भी आसानी से कृष्ण भक्ति को जागृत कर सकते हैं, और ये स्वाभाविक है और सरल भी है, ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। तो पाश्चात्य देश में कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग क्या है, ये वैदिक सभ्यता से कृष्ण भक्ति से नज़दीक है, सरल से सरल कर सकते हैं, नामों का उच्चारण करना, हर रोज थोड़ा इन ग्रंथों से पढ़ने के लिए, सुनने के लिए समय निकालना, तो इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। जब भी ज़्यादा समय मिलता है तो भगवान के धाम हम लोग जा सकते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। प्रभुपाद जी वो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त प्रयश्यति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मन। तो भगवान क्या मानते हैं हमसे, तो वो प्रेम मानते हैं। प्रेम से कोई कोई पत्ता फल फूल जल अर्पण कर लिया तो मैं स्वीकार करता हूँ ऐसे कहते। तो भगवान ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, वास्तव में उनको ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। हम लोग जो अर्पण करते हैं वो सिर्फ वो, हम उनको प्रेम करेंगे तो हमें भी हमें फायदा होता है। तो वो सिर्फ वो भक्ति, ये भक्ति शब्द बार बार आता है इस श्लोक में, तो वो मांगते हैं। और अन्य जो भी चीज़ हम लोग अर्पण करते हैं हमारे भक्ति को प्रकट करने का प्रक्रिया था यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए बहुत ही सरल है। एक और श्लोक है वो गौतमीय तंत्र में आता है और विष्णु स्मृति में भी आता है। तो उस श्लोक में कहा गया है कि भगवान तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुके न वा, तुलसी दल और थोड़ा जल गंगा जल हो सिर्फ इसको अर्पण करेंगे तो भगवान अपने भक्तों को बिक जाते हैं ऐसे बताएगा। क्यों? भक्तवत्सल है। क्यों है? क्योंकि वो भक्तवत्सल है, इसलिए सिर्फ थोड़ा तुलसी दल और जल अर्पण करने से वो बिक जाते हैं। तो जब 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 अद्वैत आचार्य उन्होंने देखा कि सब जगह बहुत भौतिकवाद फैल गया, तो नवद्वीप में उस समय आजकल का अलग भौतिकवाद है, ये बहुत ही स्थूल स्तर पर है। तो ये सब अश्लील चित्र देखना दिखाना ऐसा टेलीविजन सिनेमा या इधर उधर कार में घूमना ये सब चीज़, तो खेल कूद करना, तो ये सब चीज़ एक दूसरे को आकर्षित करना ये सब चीज़ स्थूल इंद्र तृप्ति है। लेकिन उस जमाने में 16वीं सदी में जब अद्वैत आचार्य नवद्वीप में थे तब बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बहुत वो इंद्र तृप्ति करते थे। वो सब जगह नवद्वीप एक इट वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, तो एक शिक्षा का केंद्र था वो, दुनिया से अलग अलग जगह से वहाँ पर सो शिक्षक और विद्यार्थीगण इकट्ठा हो गए थे। तो और बहुत वो लोग अलग अलग प्रकार के भौतिक शास्त्रों का अध्ययन करते थे, गीता भागवत का अध्ययन नहीं करते थे, व्याकरण न्याय मीमांसा तो ऐसे अलग अलग चीज़ों का विज्ञान अध्ययन करते थे। और एक दूसरों के बीच में वाद विवाद करने के लिए हमेशा उसमें आनंद लेते थे। तो उनको इतना आनंद हुआ, ये बौद्धिक दर पर आनंद है, ये सुख है बौद्धिक स्तर पर। गुरु शिष्य को हरा देता था और गुरु शिष्य को हरा देता, इसमें आनंद लेते थे, तो इतना भौतिकवादी बन गए थे। और अन्य लोग जो अलग अलग प्रकार के वैदिक प्रक्रिया उनको सब कर्मकांड में लगे थे, तो ये सब चीज़ देखकर कोई भक्ति नहीं करते थे भगवान की। ये देखकर अद्वैत आचार्य को बहुत दुख हो गया। तो तब उन्होंने क्या किया, मैं सिर्फ भगवान को प्रकट कराऊंगा यहाँ पर, जब भगवान प्रकट होंगे तभी ये लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो तब उनके मन में ये श्लोक याद आ गया, तुलसी दल मात्रे न, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो सिर्फ तुलसी दल और जल को अर्पण करके उन्होंने क्या किया, वो तो नवद्वीप तो गंगा के तट पर है, मायापुर नवद्वीप जहाँ पर वो वास किया करते थे। तो गंगा जल को और तुलसी दल को अर्पण करके भगवान को प्रसन्न किया और जोर से हुंकार करके उनको बुलाए। तो ऐसे बुलाकर चैतन्य महाप्रभु को इस धरातल प्रकट होने के लिए वो प्रमुख कारण बन गए। चैतन्य महाप्रभु के प्रकटे के अलग अलग कारण बताए गए, ये कारण है अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया ऐसे, तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया। तो ऐसे सरल तरीके से भगवान को भक्ति बहुत सरल है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, स्वाभाविक है और सरल भी है और आनंद महिमाएं है, तो इसके बारे में और भी गोस्वामी भक्ति के आनंद को वर्णन करते हैं। तो सुख का तीन विभाजन करते हैं वो, भौतिक भोग से, भोग के द्वारा जो आनंद मिलता है, और कोई कोई लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति का आनंद, लेकिन भक्ति का जो आनंद मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। जो मुक्ति के जो आनंद है, जहाँ पर कोई भौतिक क्लेश नहीं है, तो उस आनंद को हम करोड़ों करोड़ों गुना करके गुणाकार करेंगे, तो वो भक्ति के आनंद के एक बूंद को भी गुना नहीं कर सकते। तो ऐसे रूप गोस्वामी वर्णन करते भक्ति के आनंद को। तो ऐसे भक्ति के बारे में अलग अलग चीज़ किए गए, तो हमें उसको हृदय से स्वीकार करना चाहिए, करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अन्य चीज़ों में कुछ आनंद नहीं है, सिर्फ चमक दमक है बहुत सारा। यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं ना, तो चमक दमक, सब लोग आकर्षित हो गए, सब लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पर इस चमक दमक को आकर्षित होकर। सोच रहे हम लोग यहाँ पर सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी नहीं, सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं। तो इसलिए भक्ति को हमें स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। शॉर्ट क्लास। हम भोपाल में 1.5 साल पहले गए थे, वो एक महीने के लिए थे वहाँ पर। हर रोज हम पाँच छः घंटा प्रवचन करते थे वहाँ, हमारे ब्रह्मचारी ग्रुप, तो उनको भी वहाँ के लोगों को अच्छा लगा हिंदी। वो भोपाल तो सब जब हिंदी बोलते हैं वहाँ पर सब लोग। आप आए नहीं थे उनको देखने? गाड़ी भी होने वाले हैं और बहुत सारा पेड़ भी लगाए अभी। ज़्यादा पपाया लगा दिया आपको एक्सपोर्ट करेंगे पहले हमारे भक्तों को पहले। कहते हैं उनको
different place, I think. I
have stayed in their house.